पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाप्रसन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरस्तुते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। प्यारे सज्जनों, मेरे माताएं बहनें और बेटियां, मैं कुछ करने के लिए यहाँ आया हूँ। बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ श्री श्री राधा गोविंद जी के मंदिर में, गोपीनाथ जी के मंदिर में 7 दिनों तक भागवत कथा का प्रवचन किया। बड़े प्रेम और श्रद्धा से लोगों ने सुना। गोविंद जी के मंदिर में तो सब 10-12 हजार लोगों की उपस्थिति में वो दीजिए कथा। मैं अभी हाल ही में अभी अमेरिका, मेक्सिको इत्यादि जितने भी उधर कनाडा से गए देश हैं, अमेरिका के बड़े बड़े शहरों में, दक्षिण अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, इधर इंडोनेशिया, जापान इत्यादि में भी संस्कृति का कुछ प्रचार करने के लिए जाता हूँ। लोग बड़ा आदर करके सुनते हैं। वे इस भौतिक जीवन से ऊब चुके हैं, उनको शांति चाहिए। संसार में ऐसी कोई संस्कृति नहीं है जिसमें सुख और शांति मिल सके। बंद कर दीजिए, बहुत सुंदर मौसम है। इस समय कोई ऐसी आज संस्कृति नहीं है। बंद कर दीजिए, उससे पूरे बंद कर दीजिए।
उससे नहीं है, उससे नहीं है।
तो भारतीय संस्कृति के अतिरिक्त और विश्व में जिसमें
बात बोलने में
हमारा सनातन धर्म जो कहीं भी विश्व में नहीं, हमारे यहाँ महिलाएं पहले पढ़ी लिखी नहीं होती कि वो अपनी भक्ति से भगवान को भी वशीभूत कर लेते। छल छंद कपट इत्यादि नहीं था। जितनी पाश्चात्य सभ्यता आती गई उपनिषदों का विचार, वेदों का विचार, श्रीमद्भागवत विचार विश्व में कहीं नहीं है। मैं जहाँ जाना 14 बार मैं पृथ्वी की परिक्रमा किया, सब राष्ट्रों में गया। हमारी बातों को सुन करके बड़ी प्रभावित। सीता जी का चरित्र, राधा जी का चरित्र, कृष्ण का चरित्र, हनुमान जी का, शंकर जी का चरित्र इस समय कहीं उपलब्ध नहीं है। संक्षेप में ये समझिए कि हम शरीर नहीं है। पहली बात, जिसको जीतना ही देह में आत्मअभिमान है कि मैं ये शरीर ही मैं हूँ। आप भले ही हरिनाम कीजिए, गुरु पदार्थ कीजिए, बहुत से लोगों को देखा है गुरु पदार्थ किए हैं, 50 वर्ष हो गया, इस देह में आत्मअभिमान नहीं नहीं गया कि मैं ये हूँ। बस किसी में दिन रात चिंतित, सब अनर्थों का मूल यही है। जिस समय अभिमान भूल जाए होगा जाएंगे हम कि ये तो हार्ड मानस का एक पुतला है, आत्मा जिसमें अजर अमर है और सारे विश्व की स्थिति पर प्रलय करने वाले वही प्रभु हमारे हैं, उन्हीं से जगत की स्थिति प्रलय हुआ। उनका भजन करने के लिए भगवान ने एक सुजोग दिया था कि मैं आत्मा हूँ या अजर अमर है, भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, भगवान का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाश। गीता में भी बतलाया गया ममई वंशो जीव लोके जीव भूतर, आत्मा एक सनातन है इसके अंदर में और परमात्मा एक सनातन है, इन दोनों का जो संबंध है यही सनातन धर्म है। शरीर से सनातन धर्म का उतना संबंध नहीं है, लोग नहीं समझ पाते। एक आत्मा सनातन है, जन्म मरण उसका नहीं है, और दूसरा सनातन परम सनातन कौन है? वो परमेश्वर है, परमात्मा है, समस्त आत्माओं के जो मूल है। हम लोग उन्हीं को भूल गए, उनकी सेवा को भूल गए, इसलिए करोड़ों जन्मों से, एक जन्म से नहीं लाखों करोड़ों जन्मों से हम इस चक्कर में घूम रहे हैं, जन्म और मरण। इसी को कहते हैं भावरो, भाव मैंने होना, क्या होना? जन्म होना और मरण होना। शरीर का जन्म मरण है, आत्मा का जन्म मरण नहीं। बस इस तत्व को समझ गया मनुष्य जीवन सफल हो गया, फिर इस जगत में माता के गर्भ में नहीं आना है। ये सनातन है। सनातन धर्म की मूल भित्ति है प्रेम। भगवान क्या है? सचमुच में प्रेम है, प्रेम चाहते हैं। आज विश्व से जितना ही प्रेम दूर होता जावा जा रहा है, संसार में उतनी ही अशांति हो रही है, किंतु प्रेम किसको करेंगे? भगवान से जब प्रेम होगा तो हम सब सभी भगवान के ही हैं। परस्पर से भी किसी है, परस्पर मस्ती हो। आज हम एक पिता के चार पुत्र हैं, लड़ते हैं, ये तो हमारा धर्म नहीं, ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ये तो मुगलों की संस्कृति में पिता को कैद करके भाइयों को दारासी को मार करके बहनों को भी मार करके राजा बनते हैं, उन्हीं की संस्कृति में ये सब हो रहे हैं। उनका अभिमान है कि मैं मुस्लिम हूँ, हमारे भारतीयों में ऐसा अभिमान नहीं होता, मैं भगवान का हूँ। सबके प्रति प्रीति रखो, यहाँ तक कि तृण गुल में ये घाटों पर भी चल, हमारे ऋषि महर्षि लोग नहीं चलते थे, विशेष विशेष स्थिति में चलते थे, जिसमें कोई चीज बोल दिया जाता उसके ऊपर में नहीं चलते थे, एक मच्छर को भी नहीं मारना उनका परम धर्म, नहीं मारे तो मनुष्यों की मारने की बात नहीं। ऐसी कोई जगह है जहां पर कि भगवान नहीं है? सर्वत्र भगवान है, अणु अणु परमाणु में सर्वत्र भगवान का निवास है, किंतु सभी भगवान नहीं है, इस चीज को भी समझो। इसलिए मैंने वहां पर भक्ति के संबंध में, भगवत भक्ति के संबंध में 7 दिनों तक दोनों जगहों में मैंने भाग लिया। पहले मैं यहाँ हनुमान जी हैं, थोड़ी सी उनकी महिमा का गान करके तब भक्ति के विषय में आऊंगा। ये हनुमान जी कौन है? ये हनुमान जी शंकर जी हैं। जब जब भगवान अवतार लेते हैं तो हनुमान जी भी अवतार लेते हैं, जब राम होते हैं तो ये हनुमान बन जाते हैं, शंकर जी हैं। जब वो कृष्ण होकर के आते हैं तो वृंदावन में गोपीश्वर महादेव बन जाते हैं, भीम के अंदर में प्रवेश कर जाते हैं, भीम उनके अंश हैं। जब जब वो भगवान अवतरित होंगे कुछ न किसी रूप में जरूर हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी के संबंध में हमने गोविंद जी के मंदिर में बहुत कुछ बतलाया, थोड़ा सा और एक परिचय देकर के भक्ति के संबंध में चलूंगा। सनातन धर्म क्या है, भक्ति क्या है, भगवान क्या है और हमारा क्या कर्तव्य है मनुष्य जीवन का, क्यों नहीं हम सुखी हो रहे हैं? सब कुछ करते हैं, काफी रुपया पैसा है, बहुत प्रतिष्ठा है समाज में, किंतु कोई बुढ़ापे को रोक लेगा? मरने से कोई रोक लेगा? कोई नहीं रोक सकता, कोई मरने से रोक नहीं सकता। और मजे की बात यह, तुमने सारा जीवन जो कुछ कमाया है या कमाई और करोगे, मरने के समय में एक फीन का भी लेकर के नहीं जाना है, शरीर भी नहीं जाएगा, ये भी समझ रखो। इसलिए और भी एक समझती है, समझिए, यदि दुख अपने आप बिना बुलाए आ जाता है, अमेरिका चाहता था कि हमारे यहाँ ये आतंककारी ऐसा करें और समस्त विश्व में उनकी खौफिया पुलिस इत्यादि CID और सब तंत्र उनके विश्व से पूछते हैं, तभी हो गया ना। उसी तरह से आपके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार में यदि सुख होगा तो सुख भी खुदा वो
थप्पड़
फाड़ करके दे देगा। आप चेष्टा न करो, करो वो जरूर सुख होगा ही। जैसे सुख बिना बुलाए आप दुख आता है और भुगा लेता है, बुरी अवस्था आ जाती है भुगा लेती है, मृत्यु हो जाती है, ऐसे सुख के लिए ही तुम इतना प्रयत्न करते हो बिना बुलाया जरूर आएगा जैसे सुख आता है। इसलिए इसके लिए चिंता अधिक मत करो, मत करो इसके लिए, इसके लिए चिंता करो। इसलिए हम मूल में दुखी हैं, उसको कारण को दूर करने की चेष्टा करो। हम भगवान को भूले नहीं थे हमारे दुख के साथ, इसलिए भगवान कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, विष्णु भगवान के रूप में आते हैं, अपने भक्तों को जैसे हनुमान जी हैं, शंकर जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, उनको भेजते हैं और जगत में ये संदेश देते हैं भगवान के भूलने के वजह से ये हुआ है। कोई बड़ी सुंदरी है, कोई बड़े सुंदर है, किंतु है क्या सुंदर? थोड़ा सा चमड़ा यहाँ थोड़ा सा हटा दो और सफेद हो गया, कोई शादी करेगा? विश्व सुंदरी हो और थोड़ी सी सफेदी आ जाए यहाँ, कोई शादी करेगा? नहीं करेगा। और थोड़ा सा चमड़ा निकाल लो थोड़ा सा, तो पेट में है क्या? पैखाना और टट्टी भरी पड़ी है और इसके लिए हम मर रहे हैं। यदि जान लेंगे तो इसी का नाम है तत्व। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, समय निकाल करके भजन करो। भजन मैंने क्या है प्रभु, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, ये कहने में क्या आता है? कलयुग में उन्होंने सारी शक्ति नामों में भर दी है, इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सारे संकटों को एक क्षण में हर ले सकते हैं, इसलिए उनका नाम हरि से ये हरे है। सारे आने वाली विपत्तियों को भी हरण कर लेते हैं, इस पर विश्वास रखो। हमारे शास्त्र जो कह रहे हैं पूर्ण विश्वास, उसमें कहीं भी भूल नहीं है। हनुमान जी रामचरित में जो वाल्मीकि रामायण, तुलसी चित्र रामायण, 50 रामायण, किंतु मूल है वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण, हमारे सब शास्त्रों का निचोड़ उसमें सर्व साहित्य में भर दिया है, किंतु विचार बड़े गंभीर है। जब राम और रावण का युद्ध हुआ, उसमें रावण के बेटे मारे गए, मेघनाथ भी मारा गया, उसका सबसे बड़ा सहारा था कुंभकर्ण, वो भी मारा गया, रावण असहाय हो गया। उसका एक भाई था, बेटा था, उसका नाम था नरांतक। कहा जाता है कि बिरलास्क देश में, मैंने इंग्लैंड में उस समय वो रहता था, उसने पिताजी को कहा कि जैसे संकट होता हमको पुकारना, मैं आ जाऊंगा। तो अब देखा कि अब कोई हमारा सहारा नहीं है, मेरे वंश के सभी लोग मारे गए, तो उन्होंने रावण ने उनको स्मरण किया और साथ ही साथ आज हमारे वंश का ध्वंस हो गया, अब तुम ही एक मारे सहारे हो, नहीं तो मेरी लज्जा चली जाएगी और आपके द्वारा पराजित होऊंगा। उन्हें आप चिंता मत कीजिए, रात में जबकि सारी सेनाएं घूम रही हैं, सो रही हैं, हनुमान जी ने अपने पूछ का परकोटा बनाया, लाखों कोटि बंदर फागों को परकोटे में रख लिया और स्वयं दरवाजे पर बैठ गए। किसी की हिम्मत नहीं आए। आखिर आज के समय में नरांतक विभीषण जी का वेश बनाया और कोई दूसरा बना नहीं सकता, उनका वेश बना करके आया और बना करके हनुमान जी को प्रणाम किया। और हनुमान ने देखा ये तो विभीषण है, विभीषण का रूप कोई धारण नहीं कर सकता, बस उनको छूट दे, वो भीतर में आ गया। आकर के राम और लक्ष्मण जी सोए हुए थे, सोते नहीं कि तो कुछ लीला तो करनी है ना, सत्तु लीला कैवल्यम, भगवान ये जगत के लिए ऐसा कल्याणकारी लीलाएं करते हैं। बस उनको दिया दोनों को और ले करके पाताल में चला गया अपने यहाँ। जब चला गया तो दूसरे दिन सवेरे रात में उनकी बलि देगा राम और लक्ष्मण। उनकी देवी दुर्गा थी, दुर्गा जी के सामने में उन दोनों को लेकर के खड़ा कर दिया, कपड़े लाल बांध दिए, तिलक लगा दिया सिंदूर, और नगाड़े बजने लगे और देवी जी के सामने वो खड़ग लेकर उन्हें दोनों को मार करके बलि देगा। आग भी जल रही थी उसमें, आग भी दे और उनका रक्त देवी जी को पिलाएगा, तामसी की ये सब चीज। अब ये चारों तरफ में इधर में सेना में खोज होने लगी, हम लक्ष्मण कहाँ गए, क्या हो गया। सवेरा होते ही चारों तरफ में बंदरों की सेना अत्यंत डर गई, आज क्या होगा। सवेरे भोर में ये हनुमान जी को भी पता लगा, हनुमान जी ने सबको शांत का जाना और किसी तरह से क्लू लेकर सूत्र लेकर और वो भी पताल में उसी जगह पहुंच गए सवेरा होने के पहले ही। यहाँ पर राम और लक्ष्मण को बलि देने की तैयारी हो रही। हनुमान जी किसी फूल के सहारे और दुर्गा जी के मस्तक पर फूल रखा गया, उसके ऊपर में छोटा सा रूप बनाया। जस्ट जस्ट बदन बढ़ावा साय कपिन
दुगुन कपि रूप दिखावा,
छोटे से छोटे मच्छर से भी छोटे हो सकते हैं, अणु से भी अणु हनुमान जी हो सकते हैं, क्योंकि भगवान के सेवक हैं और बड़े से बृहद हो सकते हैं, सेवा के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं। वो फूल होकर के ऊपर में चढ़ गए और ज्यों ही प्रार्थना करके देवी से और अस्त्र से उनका सिर काटने वाले थे दोनों का, इतने में हनुमान जी ने भयंकर गर्जन किया और अपने पैरों से दुर्गा जी को पाताल में प्रवेश करा दिया और उन्हीं का खड़ग लेकर के उन सारे जो दुष्ट असुर थे वो नरंतक इत्यादि सबका वहीं पर उन्होंने काट करके और बलि दे राम लक्ष्मण देखे। राम लक्ष्मण को कंधे पर बैठाया और बैठा करके फिर वही समस्त भूमि में सवेरे सूर्योदय के पहले ही एकदम पहुंचे। कितनी सेवाएं की हैं, जब जब भगवान की जो जो इच्छा होती है ये करते हैं, इसलिए सेवक होना चाहिए तो हनुमान जी। स्वतंत्र रूप में हनुमान जी की, शंकर की, दुर्गा की, काली की पूजा मत करो। स्वतंत्र ये भगवान नहीं है, भगवान के दास हैं, इनका गुरु रूप में सेवा करनी चाहिए। शंकर भवानी गुरु रूप लऊं, तुलसीदास जी ने भी कहा, वाल्मीकि के लिए भी कहा है, हनुमान जी को, शंकर जी को, दुर्गा जी को, इनको गुरु मानो। तुलसीदास के लिए गुरु थे, हमारे संप्रदाय में भी इनको गुरु माना जाता है, भगवान नहीं। भगवान मान करके पूजा करने से वो पूजा ग्रहण नहीं करेंगे किसी को भी। इन सबके प्रभु कृष्ण हैं, वही समय पर मर्यादा की शिक्षा देने के लिए राम के रूप में आते हैं। इसलिए यथार्थ रूप में करना चाहिए, माँ को माँ, बेटी को बेटी, बहन को बहन समझो, सबको स्त्री मत समझो, जो जैसा है उसको उसी रूप में करना, यही समन्वय होता है। और जो जो नहीं है उसी को वही मानना, यही गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इनको ऐसा ही मान करके इनका भजन करना चाहिए। मैं भक्ति की बात कर रहा था, भक्ति के लिए मैंने बतलाया था वहां पर। श्रीमद् भागवत में और शास्त्र में जो बताया गया, अपने तन से, मन से, वचन से जो चेष्टाएं होती हैं, अपने मन की जो चेष्टाएं होती हैं, उन सारी चेष्टाओं को, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। उनसे लौकिक कोई स्वार्थ मत रखो, इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है, बस उनकी सेवा के बदले सेवा करो। कर्म, ज्ञान, योग, तपस्या, ज्योतिष इत्यादि जितनी है उनसे भक्ति को मत ढको, ये कर्म करने से ही भगवान मिल जाएंगे ऐसा मत सोचो, ज्ञान के द्वारा भगवान मिल जाएंगे ऐसा मत सोचो। कर्म सब समय ही गर्हित है, गर्हित माने क्या, निंदनीय है। कर्म किसको कहते हैं थोड़ी सी समझिए, हम जो कुछ करते हैं शरीर से उसको कर्म नहीं कहते, उसमें अभिमान होना कर्म है। मैं यह कार्य कर रहा हूँ, मैं रोटी खा रहा हूँ, ये कर्म इसमें नहीं है, क्रिया है केवल और करता है, मैं खा रहा हूँ, इसमें कर्म कहाँ है, ऑब्जेक्ट नहीं है, आई ईट, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, ओनली सब्जेक्ट एंड वर्ब, मैं खा रहा हूँ इसमें कर्म नहीं है, मैं खा रहा हूँ अपने लिए, शरीर की पुष्टि होगी, तब ये कर्म हो गया। जब यही कर्म भगवान के लिए करेंगे, बाजार जा रहे हैं, बाजार लाया, ठाकुर जी का भोग लगेगा, ठाकुर जी को लगा करके सबको प्रसाद के रूप में देगा, ये भक्ति हो गया। इसमें भी करना है, मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ ऐसी भावना होगी, जो कुछ करो भगवान के लिए, व्हाट एवर यू डू, डू टू प्लीज कृष्ण, देन इट विल बी भक्ति, जो कुछ करो भगवान के लिए, चलो सो खाओ पियो जो कुछ करो भगवान के लिए, देखो तुम उसी समय में मुक्त हो जाओगे, संसार का कोई कष्ट तुम्हें स्पष्ट नहीं करेगा, यही थ्योरी है भक्ति का। एक बात और, ये भक्ति जो होती है की जाए भगवान से, जो भगवान है उनके लिए सारी चेष्टाएं, और देखना चाहिए ये भगवान कौन है, दुर्गा जी भगवान है कि नहीं, हनुमान जी है कि नहीं, ये सभी सेवक हैं। इसलिए भगवान जो सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले जो हैं वो भगवान, कृष्ण राम नितिन इत्यादि जो भगवत अवतार हैं उनमें सबसे अधिक कृष्ण तू भगवान शास्त्र कहते हैं। इसलिए भगवान के लिए भक्ति होनी चाहिए, और उन लोगों को जो भगवान के सेवक हैं उनको यथायोग्य सम्मान देना होगा, उनको भी देना, वो भगवान से अलग नहीं है, भगवान के सेवक हैं। एक समय की बात है, जिसको उदाहरण के साथ में समझिए, कैकेयी जी ने नहीं चाहते वे भी महाराज दशरथ से वर मांगा, दो वर मांगे, भरत राज्य गद्दी का मालिक हो और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, 14 वर्ष का वनवास इसलिए मांगा, 14 वर्ष में लोग भरत जी की महिमा को समझ सकेंगे और इनके इनका इनके प्रति उनकी दृढ़ निष्ठा हो जाएगी, फिर राज्य बदलेगा नहीं तो प्रजाएं बगावत कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं, इसलिए बड़ी चलाकी के साथ। उसमें भी बहुत सी घटनाएं जो बहुत बड़ा रामायण हो जाएगा, मैं संक्षेप में अपने विषय को बतला रहा। जब उनको राज्य हुआ, महाराज दशरथ जी नहीं इच्छुक होने पर भी चुपचाप रहे, राम आए और उसके इच्छा अनुसार राजगद्दी को छोड़कर, जिस दिन उनका राज्याभिषेक होने वाला था, लक्ष्मण और सीता को लेकर के वन में चले गए। महाराज भरत जी दशरथ जी हाराम हाराम और हाराम कहते हुए अपने प्राणों को छोड़ दिए, वशिष्ठ जी ने दूत भेज करके भरत और शत्रुघ्न को जो अपने नैनीहाल में से कई कई देश में से उनको बुलाया। उन्होंने बड़े अपशगुन देखे, दिन में रक्त की धारा बह रही, वर्षा हो रही है रक्त की, गीदड़ रो रहे हैं, कुत्ते रो रहे हैं, कुछ उनको शक हुआ। दूत को उन्होंने कहा था काना मत कुछ, काने वशिष्ठ जी बुलाए हैं, बस इतना ही काना। किसी प्रकार से वहां ले आए। जब अयोध्या में जब पहुंचे देखा कि उनका स्वागत करने वाला कोई नहीं, अयोध्या एक विधवा की भांति रो रही है। उनको शक हुआ, महाराज दशरथ हमारे पिता होते तो जरूर आ जाते हमको लेने के लिए, किंतु आए नहीं। कहां होंगे अनुमान किया कि मेरी मैया के घर में होंगे। वहां पर पहुंचे देखा मैया तो सफेद कपड़े पहन करके सेंदूर पहुंच करके वहां पर खड़ी है। पिताजी पिताजी कहां? पिताजी तो तुम्हारे चले गए परलोक। राम भैया कहां है? पिताजी कहां है? लक्ष्मण भैया कहां है? वो लोग सब वन में गए, किस लिए, क्या हो गया? जो पिताजी मर गए, सिधार गए लोग परलोक में और भैया चले गए वन में, तो मैंने तुम्हारे लिए राजगद्दी के लिए वर मांगा था, इसलिए ये सब हुआ। अच्छा तुमने वर मांगा, आज से तुम्हारे हमारे माता और पुत्र का कोई संबंध नहीं रहा। राम के लिए तुमने वनवास मांगा और तुम्हारे लिए वो भी परलोक सिधार गए पिताजी, ठीक है मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। क्या करके उनको मनाने के लिए गए, क्या साथ से रहे उनके साथ में जी, मनाने के लिए गए। कहाँ गए? उस समय रामचंद्र जी चित्रकूट में थे। चित्रकूट में जब पहुंचे लक्ष्मण जी को और राम को भी पता लग गया कि चतुरंगड़ी सेना लेकर के आ रहा है। लक्ष्मण जी ने सोचा कि चतुरंगड़ी सेना को लाने के लिए क्या जरूरत थी, मालूम होता है कि वो आक्रमण करके हम सबको मार डालना चाहता है, पर धनुष लेकर के तैयार हो गए, जब भी भरत को मारूंगा। राम ने कहा ऐसा मत करो, मैं राम भरत को जानता हूँ, उसका हमारे प्रति कितना प्रेम है, पीछे पछताओगे तुम। उनके कहने से मान तो गए लक्ष्मण जी, किंतु भीतर में क्रोध था, ये भरत को मैं मारूं उसकी मैया को भी मारूंगा। किंतु राम के कहने से उस समय शांत हो गए। और इतने में भरत जी पहुंचे, रामचंद्र जी के चरणों में गिरे और रोने लगे। लक्ष्मण को देखकर के अब चेतन था, भैया आपको अयोध्या चलना है और राज्य लेना है। उन्होंने कहा कि देखो प्रतीक्षा करो, कल सभा होगी, हमने सुना है महाराज जनक भी आ रहे हैं, सीता जी की मैया सुनैना भी आ रही है और बड़े बड़े ऋषि लोग वशिष्ठ इत्यादि भी आए हैं, कल सभा में विचार होगा, विचार हो करके जैसा होगा हम लोग करें, प्रीति पूर्वक करें। रात हो गई, भरत जी कौशल्या के पास में गए, बोले कि मैया तुमसे एक वरदान चाहता हूँ। बोले क्या चाहते हो? तुम राम से कह दो जो अयोध्या में लौट करके राज्य भाग लें। मुझे बेटा मैं ये कैसे कह सकती, वो भी तो धर्म पथ पर है, अधर्म पथ पिता की आज्ञा मान करके आया है, मैं कैसे कह दूं? ये तो उसके पिता ही कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते, तो मैं क्या गलत कह रहा हूँ? नहीं तुम गलत नहीं कह रहे, ठीक कह रहे, तुम अपने तरफ से ठीक कह रहे हो, तुम राज्य नहीं चाहते हो जिसके लिए तुम दुखी हो, किंतु मैं तुमको भी वैसा ही जानता हूँ, जानती हूँ उनको भी, इसलिए मैं नहीं। तुम लोग सोच विचार करके जो अच्छा हो वो करो। वशिष्ठ जी के यहाँ रात में गए, बोले जी गुरु जी आज से एक निवेदन है, ये निवेदन है कि आप कृपा करके राम को आदेश दे दें, अयोध्या का राज्य ले लें और लौट जाएं। उन्होंने कहा कि मैं कैसे भाई कहूं, मैं भी नहीं कह सकता। हाँ एक बात है, तुम उसके बदले में वन में चले जाओ तो उसे मैं कह सकता हूँ कि हाँ आपके बदले में भरत जी जा रहा है वन में, और आप तुम अयोध्या में पहुंच करके राज्याभिषेक आपका हो जाए, आप राज्य के उत्तराधिकारी। ये तो कह सकते। अच्छा तो इतना ही कर लीजिए, मैं इस पर विराजी हूँ, मैं बन जाने के लिए तैयार हूँ 14 बरस, किंतु हमारा भाई क्यों कर सकता है, वो लौटा है, बड़े भाई ही राज्य का अधिकारी। उन्होंने कहा कि इतना भी मैं पूछूंगा और यदि राजी होंगे राम सब तो मैं कहूंगा, अन्यथा मैं नहीं कहूंगा। बात नहीं बनी। राती में वो गए सुनैना जी के यहाँ, महाराज जनक आए हैं, जनक हमारे दोनों कुल के पिता हैं, हमारे पिताजी नहीं रहे इसलिए ये जनक जी हम लोगों के पिताजी हैं, गुरु भी हैं, वो जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, इसलिए आप अपने पति से कहिए जो वो राम को आदेश देंगे लौट जाए, नहीं तो सीता को कितना वन में कष्ट होगा। उन्होंने कहा मैं प्रयास करूंगी, वो किसी की बात नहीं सुनने वाले, जो उचित न्याय होगा वही कहते हैं, इसलिए मैं ये तुम्हारी बात उन तक पहुंचा दूंगी, क्या करेंगे नहीं करेंगे मैं नहीं कर सकती। वहां से भी निराश हो गया। दूसरा दिन हुआ, बड़ी सभा बैठी जैसे अभी बैठी है, एक तरफ में महिलाएं बैठी, एक तरफ में पुरुष बैठे, एक तरफ में ऋषि महर्षि लोग सामने बैठे, वाल्मीकि जी भी उस सभा में थे, वशिष्ठ जी जैसे बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग बैठे, और वहां के चित्रकूट के बड़े बड़े साधु लोग बैठे, अयोध्यापुर के जिधर में बैठे थे उधर में रानियां बैठी थी, कौशल्या और कैकेयी सुमित्रा, भरत जी उस साइड में बैठे, और इधर में राम जी बैठे और लक्ष्मण जी बैठे, सीता जी उसी घर में बैठे। महाराज जनक को बीच में आसन दिया गया। वशिष्ठ जी ने कहा मेरी बुद्धि कुछ भ्रमित हो गई है, मैं अयोध्या के वंश का अन्न खाया है, इसलिए मैं शुद्ध शुद्ध निर्णय नहीं कर सकता, मेरी बुद्धि कुछ भ्रमित हो गई है, मैं जानता हूं कि आप मुक्त पुरुष हैं, आपको जनक कहा जाता है, कैसे मुक्त, शरीर रहते हुए भी आप मुक्त हैं, कहीं भी आपकी आसक्ति नहीं, इसलिए आपका नाम विदेह है, इसलिए मैं जानता हूं कि आप यथार्थ में निर्णय दे सकते। वशिष्ठ जी ने कहा आराम से ये जो आदेश और निर्णय देंगे तुम्हारे लिए मान्य होगा या नहीं। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा लास्ट बार मान्य होगा, जय मैं जरूर इनकी बात को मानना, अभी आदेश देंगे मैं लौट जाऊंगा। उन्होंने भक्त की तरफ में पूछा भरत जी ये जो निर्णय देंगे आप मानेंगे कि नहीं। कोटि बार मानूंगा, जैसा कहेंगे मैं उसको मानने के लिए बाध्य हूं। मैंने कहा सभी सारी सभाएं दोनों की बातें सुन रही है। सुनने के बाद उन्होंने कहा महाराज जनक आप उचित और अनुचित समझ करके बिना किसी भाव के भेदभाव के आप इस समय में अयोध्या के लिए राम और भरत के लिए जिस अयोध्या की नाव डगमगा रही है उसको सुस्थ विचार से आप उसको शांत कीजिए, विचार निर्णय दीजिए, ये दोनों आपके विचार मानने के लिए बात। महाराज जनक शंकर जी का स्मरण किया, उनके गुरु हैं, और स्मरण करके प्रणाम करके बोले बहुत विचार करके, सभी लोग सुन रहे थे बड़े ध्यान से, जैसे आप लोग सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुने। उन्होंने कहा देखो एक तरफ मर्यादा है एक तरफ में प्रेम है, भरत जी प्रेम की सीमा है और रामचंद्र क्या है, ये मर्यादा के हिमालय हैं, ये सबसे मत मर्यादा को छोड़ नहीं सकते हैं, मर्यादा ही इनका स्वरूप है, और भरत का स्वभाव क्या है, वो प्रेमी है। दूसरी तरफ भरत का जो प्रेम है ये महासागर है, कौन सा, प्रशांत, जो कि 10 माइल नीचा है उसमें पानी है या कितना है था नहीं लगता, और हिमालय है इसकी एवरेस्ट चोटी है ये 7 मील के करीब में ऊंची है। यदि हिमालय को समुद्र में प्रशांत महासागर में रख दिया जाए तो उसमें डूब जाएगा। ऐसे ही भारत का प्रेम जो है ये अनंत समुद्र है प्रेम का। प्रेम मर्यादा नहीं देखता, प्रेम देखता है प्रेम के। इसलिए मैं समझता हूँ कि भरत की जीत हुई। भरत का प्रेम प्रशांत महासागर से भी गंभीर है और उसमें राम रूपी हिमालय की जो मर्यादा है उसमें वो डूब जा गया। किंतु याद रखो, डूबने पर भी हिमालय इधर उधर नहीं होगा। रामचंद्र जी की अपनी मर्यादा को छोड़ेंगे नहीं, नहीं छोड़ सकते। प्रेम की भी मर्यादा एक होती है। प्रेम ऐसे तैसे जैसे आजकल जगत में होता है ना, 10 बार 20 बार अमेरिका में तो 500 बार एक दिन में दो पति बदल लो, कोई भी बात नहीं है। इसकी बदल लो कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो हमारे देश में हम लोग विचार, आजकल पश्चिम देश की हवा यहाँ पर भी आ रही है। ये कोई बुराई ही नहीं है मानो, ये तो पान चबाना और सुख देना है। अब वो ये आ रही हवा जिसे आप लोग दोनों महिलाएं और पुरुष दोनों भी बचे रहे, ऐसी हवा भारत वर्ष में ना आए, आ रही है तो रोकने की चेष्टा करो, नहीं तो यहाँ पर भी बड़ी अशांति। उस देशों में ये कोई नहीं जानता है कि इसका बेटा है, कोई नहीं जानता मैया का बेटा है, किससे हुआ ये कोई पता नहीं। और जितने ऐसे होते हैं वो ही आकताई होते हैं। आकताई माने ये चरवस्त होते हैं, उनके कोई धर्म नहीं रहता, वर्ण संग करते होते हैं, उनका कोई धर्म माया ममता प्रीति नहीं होती। तो जनक जी कह रहे हैं भरत जी की जीत हुई प्रेम की, इसके लिए कोई मर्यादा नहीं। किंतु प्रेम की भी मर्यादा होती है, वो प्रेम की मर्यादा क्या है इस चीज को समझो। मर्यादा यह है जो प्रेम करता है उसको लौकिक कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, उसको ये समझना चाहिए कि हमारे इष्ट देव क्या चाहते हैं। तुम्हारे इष्ट देव भरत के हैं रामचंद्र जी। भरत जी तो अपने तरफ से ये देख रहा था कि वो लौट आए तो मुझे बहुत सुख होगा, नहीं तो मुझे बड़ा दुख है। किंतु उन्होंने ये नहीं सोचा जो रामचंद्र जी जो जा रहे हैं बनने, इससे उनको दुख है कि कष्ट हो। राज्य में आकर के राज्य का उत्तराधिकारी बन जाए, राज्य ले लें, उनको दुख होगा कि सुख होगा ये उनको पता नहीं। वो इस पर विचार ही नहीं करें, वो तो अपना दुख देख रहे हैं। भैया आकर के राज्य ले, मेरी बात को फिर से समझने की चेष्टा। जो भक्त होता है उसको ये समझना चाहिए कि हमारे प्रभु कैसे खुश होंगे। ये चीज अपने खुशी अपना आनंद नहीं चाहता है। गोपियां कृष्ण जी को पंखे झला रही हैं और झलाते जाते प्रेम में विवश होकर के उनके हाथ से पंखा गिर गया, अपने को धिक्कार दे रही हैं। अपने आनंद में तुम भगवान की सेवा को भूल गई। इसलिए भरत तुम राम से पूछो, राम क्या चाहता है, उनको किस विषय में सुखी है। वो हो सकता है बन जाने में या लौटने में, और जैसा कहता है उसका पालन करो। भरत जी उनके चरणों में गिर पड़े। आज मैंने समझा आप यथार्थ में गुरु हैं। भक्तों को ये देखना चाहिए हमारे तन मन की क्रियाओं से भगवान को सुख हो रहा है या नहीं। अपने लिए ना सोचे, हम लोग अपना अपना सोचते हैं। हे प्रभु हमको मुक्ति दे दीजिए, धन दे दीजिए, परिवार दे दीजिए, सुख दीजिए, संपत्ति दे दीजिए, प्रतिष्ठा दे दीजिए, ये भक्ति नहीं है। भगवान की सेवा से भगवान सुखी रहे, यही गोपियों का आदर्श श्रीमद् भागवत में दिखलाया गया है, शास्त्रों में दिखलाया गया है। भरत ने कहा आज मेरी आंख सुन ले, सस्तांग प्रणाम किया, प्रणाम करके रामचंद्र जी के पास में गए। प्रभु आप मेरे इष्ट देव हैं, मैं आपको सुखी बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं राज्य में ले जाना चाहता हूँ। अब बतलाइए कि आप कैसे सुखी रहेंगे, हम तो बतलाए वही करेंगे। राम ने कहा महाराज जनक ने कह रखा है कि तुम्हारे प्रेम की जीत हुई और मेरी हार हुई। सचमुच में मेरे प्रेम की हार हुई, इसलिए तुम जो राज्य गद्दी देना चाहता है मैंने उसको ग्रहण कर लिया। मेरा अभिषेक इत्यादि कर दो। मैंने राज्य का राज्य संपूर्ण रूप से ले लिया, किंतु एक बात है, अब मैं राजा हो गया। जो जाता था राज्य लेना मैंने ले लिया, और ले करके अब मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि 14 वर्ष तक इस राज्य की मेरा प्रतिनिधि होकर के रक्षा करो, जब तक मैं नहीं आ जाता। मैं 14 वर्षों में एक मिनट का विलंब नहीं होगा, मैं आ जाऊंगा। राम को तो बहुत कुछ करना था ना, यदि राजा हो जाते तो असुरों का संहार नहीं होता, धर्म की प्रतिष्ठा नहीं हो जाती, तब तो कली उसी समय में आ जाता। सीता को जबरदस्ती पकड़ कर ले गया, न जाने कितनों को ले गया था। और असुरों का यही काम है, धर्म के विरुद्ध काम करते हैं, इसलिए उनको दंड दे करके धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए राम आए, इसलिए केवल राज्य के लिए नहीं आए, इसलिए राम ने उनको बतलाया। अब अंत में भरत जी उनकी खड़ाऊ ली, आप मुझे अपनी खड़ाऊ दीजिए, यही राज्य आपका प्रतिनिधि होगा, मैं सेवक होकर के नंदी गांव में रह करके आपकी सेवा करूंगा, राज्य का देखूंगा। इसलिए उनका आदेश लेकर उनकी खड़ाऊ लेकर के आए, अयोध्या में नहीं गए। नंदीग्राम अयोध्या से थोड़ी दूर एक पर्वत श्रेणी वहाँ है, वहीं पर राज सिंहासन बनाया, और रामचंद्र जैसा जटा रख के रह रहे थे, अपनी पत्नी को भी आदेश नहीं दिया वहाँ आने के लिए, और वहीं से राज्य का संचालन करते, पूरे बैरागी रूप में रामचंद्र जी जैसे बनने रह करके करना है वैसे करते, और 14 वर्ष तक ही रक्षा। इसके बाद में जब राम आए तब लौटे, और इसी बीच में कई कई एक दिन पहुंची मैया, महारानी अब किस लिए यहाँ आए? बेटा मुझे नारानी मत करो, मुझे मैया एक बार कोई इसी लिए आए, आप वहीं पर हैं अयोध्या के मल में रहिए, महारानी आपका यहाँ आकर के क्या करेंगे? तो मेरा बेटा जहाँ है वहीं रहूंगी, मुझे वो बिच्छू जैसा डंक मार रहा है वो स्थान, मैं वहाँ नहीं रह सकती। महाराज ने कहा, भरत जी ने कहा, तुम्हारे लिए वचित वही है, तुम्हारे बिच्छू और डंक ये मारते रहे, इसका भोग प्रायश्चित करो, मैं तुम्हें मैया फिर से नहीं कर सकता। महारानी कह गई, आपका आदेश हो तो कहिए, आने की जरूरत नहीं, आदेश फरमान पर लिख दीजिए, आदेश हमको दीजिएगा, मैं वो कर दूंगा, किंतु माँ का संबंध अब नहीं रहा। इतने कठोर जिनके प्रिय न राम वैदेही, सजिए कोटि बैरी समय जब जप पर अतंत स्नेही हो, माता भैया गुरु भाई पति पत्नी, तो अभी यदि राम का कृष्ण का विरोधी है तो उसे कोई संबंध मत रखो। हमारी मीरा जी ने जब राणा का अत्याचार उन पर होना आरंभ हुआ, घर वाले सब इनके विरोधी बन गए, उनको घर में जला देना चाहा, बीस दिया, क्या क्या नहीं दिया, मीरा जी ने कहा यहाँ पर मेरा भजन होना संभव, तो उसे दास को ये पत्र लिखा, मुझे अभी इस संसार में ये घर में रहूं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता, आप कुछ मुझे परामर्श दीजिए। तो उन्होंने यही लिखा, पत्र लिख करके भेज दिया, जिनको प्रिय न राम वैदेही सजिए कोटि वैदेही जग जप परामर्श। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो, जीवन में भी सुखी रहना चाहते हो, पारलौकिक जीवन चाहते हो, जन्म जन्मांतर में सुखी रहना चाहते हो, तो जिनके प्रिय न राम वैदेही, जिनके राम और सीताजी कृष्ण और राधा जी तैयारी नहीं है, उनको तत्क्षणात छोड़ो, क्या कर सके पिता प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को छोड़ दिया ना, हिरण्यकश्यप को, भरत जी ने अपनी मैया को छोड़ दिया, बलि महाराज ने अपने गुरु को छोड़ दिया, गोपियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया, भाई विभीषण ने अपने भैया रावण को छोड़ दिया, भय जग मंगलकारी उनका मंगल ही हुआ। इसलिए जीवन में हम 4 दिन के लिए आए हैं विशेष कारण के लिए, भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, मनुष्य शरीर में ही भगवान का भजन और संबंध ज्ञान हो सकता है। स्त्री पुरुष बाल बच्चे तो ये सभी कुकर गधे को भी ये मिल जाएगा, हम इसलिए भगवान ने नहीं भेजा, मनुष्य जीवन की चरम साक्षात्कार इसी में है कि हम जाने के मैं कौन हूँ, इसलिए जगत में आया, प्रभु कौन है, इसलिए भगवान ने मनुष्य जन्म दिया। कुकर गधे को सत्संग नहीं हो सकता, यहाँ पर नहीं बैठेंगे हम लोग, इन विचारों को सुन करके परमार्थ कर सकते हैं। भगवान के भजन में क्या कष्ट है कोई कष्ट? अरे सवेरे बैठ जाओ, स्नान किया नहीं किया, चलते फिरते उठते बैठते फिसलते छीकते समय भी भगवान का नाम ले लिया, इसमें क्या लगता है? हे प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, क्या लगता है? किसी का नाम तो भजन है। तत्वता जान करके सदगुरु जो भगवान का भजन करने वाले हैं उनसे परामर्श लेकर उनके अनुगत में ऐसा ही भजन करो, तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। आज 7:30 बजने जा रहा है, वक्तव्य को यही पर समाप्त करता हूँ। किंतु निवेदन यही है, जा रही है कोई भी बात नहीं, गृहस्थ धर्म रहिए, त्यागी धर्म रहिए, बैचलर रहिए, जैसा भी रहिए, किंतु भगवान का नाम महामंत्र इसको जरूर सवेरे स्मरण, चलते फिरते उठते बैठे, भोजन किया कि नहीं किया नहीं इसकी भी कोई जरूरत नहीं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम राम। कलयुग केवल नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, कलौ नाम सेव नाश सेव नाश, और कोई दूसरी गति नहीं है सुखी होने का, ऐसा समझ करके आप लोग जो कुछ करते हैं सदाचार रूप रह करके भगवान का स्मरण करके अपने जीवन में बात ये करते हैं।
हरे कृष्णा। कल भी ऐसे ही सायंकाल 5 बजे से